नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ सार्वभौमिक मूल आय मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं की लागत पर नहीं आ सकती। इसके बारे में समाज के हर तबके के व्यक्ति को एक निश्चित इनकम मुहैया कराने का उद्देश्य से प्रस्तावित की गई यूनिवर्सल बेसिक इनकम कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेने के बाद ही लाया जा सकता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए अरविंद कुमार सुब्रमण्यम ने कहा कि यूबीआई की लागत इतनी भारी भरकम होगी कि इसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ नहीं लाया जा सकता है। सरकार इसका बोझ नहीं उठा सकती और सरकार की वित्तीय हालत बुरी तरह से खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में यूबीआई योजना गरीबों के उत्थान के बारे में है। सरकार समाज कल्याण कार्यक्रमों पर काफी पैसा खर्च करती है लेकिन यह लक्षित लोगों तक नहीं पहुंच पाता। पूर्व ग्रामीण विकास सचिव एनसी सक्सेना ने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यूबीआई मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त होगा या उन्हें बदल देगा। यदि यह अतिरिक्त है तो हमें 80,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। यह कहां से आने वाला है? अगर यह खाद सब्सिडी जैसी योजनाओं की जगह ले रहा है तो सरकार को इसका परिणाम तभी करना होगा क्योंकि खाद सब्सिडी दूर करना एक बड़ा राजनीतिक निर्णय है।
दोस्तों, मैं मधु बात करूंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शर्तें उसे महिला विरोधी बनाती हैं। इस विषय पर मातृत्व हक के संघर्ष और व्यवस्था की नीतियों ने यह तो साबित कर दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP में 8% की वृद्धि दर राज्य व्यवस्था को संवेदनशील नहीं बनाती है। इसने राज्य और नीति बनाने वालों को और ज्यादा कठोर बनाया है। आर्थिक विकास की जद्दोजहद में व्यवस्था लैंगिक रूप से असंवेदनशील हो जाती है। पहली बार अगस्त 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी अन्य व्यवस्था के तहत मातृत्व हक पाने वाली महिलाओं को छोड़कर सभी महिलाओं को इस कानून के तहत मातृत्व हक के रूप में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे उम्मीद जगी थी कि सरकार की इस पहल से 2.73 करोड़ महिलाओं में से मातृत्व हक से वंचित 2.50 करोड़ महिलाओं को मातृत्व हक मिलने की शुरुआत होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। कानून बन जाने के बाद भी 3 साल तक इस प्रावधान को लागू करने की मंशा सरकार ने नहीं दिखाई। किसी भी महिला को कामकाजी तभी माना जाता है जब वह आर्थिक आय में सीधा योगदान करती हो। इस योजना में लाभ लेने वाली महिला हक धारक नहीं बल्कि याचक होगी। उसे 3 किश्तों में 5,000 रुपए पाने के लिए हर बार आवेदन करके कुल 13 पन्नों में फॉर्म भरने होंगे। हर पंजीकरण, आधार पूरा भरा हुआ, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड जमा करना होगा। योजना के अनुसार गर्भधारण के पंजीयन पर हितग्राही को 1,000 रुपए की पहली किश्त का भुगतान किए जाने का नियम है। यदि पहली किश्त मिल जाने के बाद गर्भपात हो जाता है तब महिला को जीवन में दूसरी बार गर्भवती होने पर इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, उसे पहले किश्त से वंचित कर दिया जाएगा। मानो महिला ने पहले कोई अपराध किया हो। इसी तरह नियम है कि जब पंजीकृत गर्भवती महिला की 1 प्रसव पूर्व जांच होगी तब 2,000 रुपए की दूसरी किश्त का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद यदि किसी कारणवश गर्भपात हो गया या मृत शिशु का जन्म हुआ, उस स्थिति में जीवन में पुनः गर्भवती होने पर महिला को शुरुआती 2 किश्तों रुपए 3,000 का सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले की गर्भावस्था में उसके 2 किश्तें मिली हैं, उसे केवल तीसरी किश्त 2,000 का ही सहयोग मिलेगा। विवाह और प्रजनन के बारे में निर्णय अब भी पितृ सत्तात्मक समाज ही लेता है। ऐसे में PMMVI में शामिल शर्तों को केवल और केवल महिला विरोधी माना जाना चाहिए।
दोस्तों, मैं हूं किशन और मैं आज आपको बताऊंगा रेत खनन के संबंध में। दोस्तों, भारत के निर्माण के बूम के दौरान निर्मित आधे से अधिक अपार्टमेंट नई दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। इन अपार्टमेंटों में से एक सबसे अधिक सांद्रता ग्रेटर नोएडा में है, जो एक उपनगर है जो हिंदी विद्या में 2 सबसे पवित्र नदियों के बीच स्थित है, पश्चिम में यमुना और पूर्व में गंगा। दोनों नदियों से भारी खनन किया जा रहा है। जब रेत खनन के खतरों की चेतावनी दी गई थी तो किसी ने नहीं सुनी। नदी से लगभग सभी रेत निकाले जाने के कारण पानी की मेज मेल के आसपास गिर गई थी। जब भारतीय सब रेत माफिया सब का उपयोग करते हैं तो वे पूरी तरह से उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अवैध रेत खनन से लाभ उठाते हैं, जैसे स्थानीय मजदूर, उभरते पूंजीपति जो ट्रकों और धरती के मालिक हैं, वास्तविक मॉबस्टर्स जो कुछ जगहों पर खनिक को व्यवस्थित करते हैं। मैककिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने गणना की है कि गांवों से शहरों तक पहुंचने वाले लाखों भारतीयों को सालाना नए अचल संपत्ति विकास में 1 अरब वर्ग गज की आवश्यकता होती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पहले से ही प्रत्येक वर्ष 800 मिलियन टन से अधिक रेत खनन ज्यादातर भारत के जलमार्ग से होता है। भारत में अधिकतर लोग मानते हैं कि इस कारोबार को अधिकतर लोग करते हैं और यह स्पष्ट भी है कि नदी को ज्यादातर गांव वाले ने ही खनन किया था। कई लोग पुलिस से बचने के लिए रात में रेत का खनन करते थे। कई पुलिस वाले रेत का खनन करने वालों से वसूली कर बहुत धन भी कमाए हैं। इस पर कानून भी बने लेकिन लोगों ने इसे अपना व्यवसाय बना लिया और वे इस व्यवसाय को छोड़ना नहीं चाहते हैं।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।